आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
सर, आपने इतना लंबा वक्त रेडियो में गुजारा और आपने वो दौर देखे हैं जब सुनहरा काल था भारतीय संगीत का, फिल्म संगीत का, तब से लेके आज तक में आप क्या फर्क महसूस करते हैं?
क्या फर्क महसूस करते हैं?
जी
भाई देखो, जमाना तो बदलता ही रहता है। हमारे घर में भी अगर हम उस ज़माने का माहौल देखें और आज के ज़माने का माहौल देखें तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे वक्त गुज़रता है, समय गुज़रता है, तो साथ साथ ज़माना बदलता रहता है। तो इसलिए अदल बदल तो बदलाव तो आता ही रहता है हर चीज़।
जी
वही यहाँ हुई है। गड़बड़ सिर्फ ये है कि हमारा पुराना जो ज़माना था उसमें एक बड़ी गहराई होती थी, उसमें बड़ी सच्चाई होती थी, उसमें हम दिल साफ रखकर सही बात मुझसे कहते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में अब ये धीरे धीरे बदलते बदलते क्या झूठ फरेब गड़बड़े सब हो चुके हैं, जैसे कि हमारे ज़िंदगी में भी हो रही हैं
जी,
भ्रष्टाचार और बलात्कार और छीना झपटी और टैक्सेस ऐसे कि साहब लोग सीधी तरीके से आराम से जी नहीं सकें, और जो सच्चे लोग हैं वो बेचारे मरते जा रहे हैं
जी।
अब देखिए मैं आपको सीधी सी बात, छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे टैक्सेशन में भी और हमारी और जो नई नई रूल रेगुलेशन है उसमें कितनी तकलीफ हो रही है आजकल। जैसे गुलजार ने बहुत सही बात कही थी अपनी एक कविता में
जी,
कि आजकल रोज अखबार मेरे घर खून में लथपथ आता है। तो यही है कि साहब अब देखिए आप टैक्सेशन में ये GST जो है टैक्स आया है
जी,
अब क्या इनकम टैक्स में तो ये भी देखते हैं कि खर्चा कितना हुआ वो कम हो जाता है, मगर GST में तो नहीं, आप इतना पैसा दे दीजिए। अरे साहब 18% है वो, उसमें कितनी तकलीफ होती है। और क्यों डबल टैक्स क्यों रखा है, बहुत बहुत तकलीफ हो रही है इससे। या फिर बाकी रूल्स भी कई हैं, पार्किंग के रूल्स देख लीजिए, और 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार फाइन होता है। तो लोग कहाँ से देंगे भाई, कैसे देंगे? वही लोग दे पाएंगे जो या तो टेढ़े लोग हैं जो कि कमाते भी पैसा इतना है जोरों शोर से कि वो दे सकते हैं कुछ भी, या वो फिर वो पुलिसमैन या जो भी है टैक्स लेने वाला उससे कहेंगे ये देखो 10 हज़ार है ना, तुम ऐसे करो, तुम हमको रसीद मत दो, हम आपको 1,000 दे देते हैं, तो 1,000 लेकर बंद कर दीजिए इसको। तो ये
यानी भ्रष्टाचार को नए सिरे से बढ़ावा दिया जाए।
हाँ, बलात्कार चलता रहता है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि,
लेकिन ये तो देश के हालात जो आर्थिक स्थिति है उस पर आपने चर्चा की, और अभी जो माहौल बिगड़ा है जिस तरह से, ऐसा लग रहा है कि जैसे देश का माहौल और लोगों के बीच दूरियां जो बनी हैं उसको आप कैसे देखते हैं?
वही है, ये है कि जब तक सच्चाई सत्य अच्छी तरह से हमारे दिलों में, हमारे कामों में, हमारे बर्ताव में ना आ जाए तब तक ये माहौल सुधरेगा नहीं, ये हालत बिगड़ती ही चली जाएगी, यहाँ तक कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। और मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैं गांधीवादी हूँ, स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उस ज़माने में मैं स्टूडेंट था, स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन गांधी जी, नेहरू, इन सब का हमारे परिवार में बड़ा असर था, क्योंकि मेरे जो अब्बा के चाचा थे वो थे रहमतुल्ला सायानी, रहमतुल्ला सायानी जो कि गांधी जी को लॉयर बनाने में उन्होंने बहुत मदद की थी, उनको साउथ अफ्रीका भी ले गए थे, बहुत बहुत मदद की थी। और हमारे नाना जो थे वो थे रजब अली पटेल, वो मौलाना आज़ाद के भी डॉक्टर थे और गांधी जी के भी डॉक्टर थे। तो उस ज़माने से हमारे परिवार में ये स्वतंत्रता का आंदोलन जो है वो बड़े गहरे तरीके से आया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि गांधी जी ने हमारी अम्मा को अपनी बेटी बना लिया था, और अम्मा हमारी काम कर रही थी सोशल वर्क में, साक्षरता का काम कर रही थी और सामाजिक काम भी करती थी, ख़ासतौर से उन औरतों के लिए जो कि कमाती नहीं थी ज़्यादा, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको समझाना अच्छे तरीके से, उन्हें सिखाना आजकल क्या होना चाहिए। तो बहुत बहुत काम करती थी। कुलसुम सायानी नाम था
जी जी।
और उन्होंने नेहरू लिटरेसी अवार्ड, वो पहली हिंदुस्तानी महिला थी जिन्होंने नेहरू लिटरेसी अवार्ड जीता था। और इस काम से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको बुलाकर कहा कि देखिए, देखो बेटी, भारत अब आज़ाद होने की तरफ, आज़ादी की तरफ चल पड़ा है, तो एक चीज़ मैं चाहता हूँ जो आए पहले एज अ फर्स्ट स्टेप, वो ये है कि भारत की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा, वो सरल हिंदुस्तानी हो ताकि सब समझ सकें इसे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब। तो उन्होंने अम्मा से कहा कि देखो, मैं चाहता हूँ कि आजकल लोग जो है ना वो बहुत ये गड़बड़ कर रहे हैं, कि कुछ हिंदीवादी हैं तो इतनी क्लिष्ट हिंदी बोलना चाहते हैं कि समझ में नहीं आया किसकी। तो अम्मा ने पूछा उनको क्या कैसे, मतलब कुछ मिसालें दीजिए। कहने लगे वो कि तुम्हें पता है कि जैसे सीधे साधे शब्द हैं, सिग्नल है, अंग्रेजी शब्द है ठीक है, मगर हमारी भाषा में वो आ चुका है, तो हिंदुस्तानी भाषा में सिग्नल तो चली जाता है, मगर ये जो बहुत क्लिष्ट भाषा जो चाहते हैं वो अकड़ गए हैं। कहेंगे नहीं, हम ये जो सिग्नल शब्द है ये तो अंग्रेजी शब्द है, हमें नहीं चाहिए ये शब्द। तो उन्होंने पूछा तो फिर आप कौन सा शब्द लाएंगे हिंदी में सिग्नल के लिए। तो कहने लगे हम चाहते हैं कि चार पांच शब्दों को मिलाकर एक अच्छा सा हिंदी शब्द बनाएं सिग्नल के लिए। तो उन्होंने पूछा क्या, कहने लगे गमन नागमन सूचिका लौह पट्टिका। पागल लोग
जैसे लौह पथगामिनी।
और फिर कहने लगे एक और शब्द है टाई जो है ना, वो अंग्रेज़ों ने दी हमको ये चीज़ टाई, हमें नहीं चाहिए, और ये शब्द टाई भी हम बदलना चाहेंगे। तो पूछा उन्होंने कि क्या आप करना चाहते हैं, उसको क्या कहेंगे टाई को। कहने लगे हम टाई को कहेंगे कंठ लंगोट। तो ऐसा पागलपन बहुत होता था
जी।
उन्होंने कहा कि हमें क्लिष्ट हिंदी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसी हिंदुस्तानी जो सब समझ सकें। और एक एक ऐसी चीज़ जो सब समझ सके वो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत
जी।
तो उसी तरह की भाषा वो चाहते थे। तो कहने लगे कि बेटी तुम एक पखवाड़िक पत्रिका शुरू करो, जर्नल, जिस जो कि तीन लिपियों में छपे, एक तो हो अपना हिंदी की कौन सी लिखी है, क्या नाम उसका,
हिंदी की
जो लिपि है
जी जी, देवनागरी,
देवनागरी जी। देवनागरी में छपे एक तो, जो कि मराठी की भी लिपि है और हिंदी की भी लिपि है, दूसरी लिपि हो गुजराती और तीसरी लिपि हो उर्दू। तो तीनों लिपियों में छपे मगर लाइन टू लाइन भाषा बिल्कुल सरल हिंदुस्तानी हो जो सब समझ सके। तो अम्मा ने ये शुरू किया, हमारे घर में ही वो एडिट और पब्लिश होता था।
अच्छा,
बाद में प्रिंटिंग भी हमारे घर में शुरू हुआ।
कौन सी पत्रिका थी वो?
रहबर उसका नाम था।
अच्छा,
रहबर का मतलब है पथ प्रदर्शक। तो ये शुरू हुआ, मैं उसमें बचपन से ही शायद 10-11 साल का होगा या उससे भी छोटा होगा, मैं उसमें एज अ ट्यून जुड़ गया कि रजिस्टर भरना, फिर वो उस जमाने में लिथो में छपा करता था तो उसकी प्रूफ करेक्शन भी देखना, और हिंदी उर्दू मैंने सीखी नहीं थी ज़्यादा, गुजराती में मेरी शुरू की तालीम गुजराती में हुई थी और अंग्रेज़ी में हाँ बहुत काम किया था मैंने, तो वो शुरू हुआ तो उसे पढ़ते 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 मेरे दिल में भाषा जो है हिंदुस्तानी उसका रंग जो है वो छाने लगा, और ख़ास करके रहबर में दो वर्जन दो आर्टिकल्स आते थे सीरियल्स हर फोर्टनाइट में, तो एक तो सरल हिंदी कविता और एक आसान उर्दू शायरी, ये पढ़ पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता था और धीरे धीरे भाषा भी मेरी लिखित रूप में भाषा में अच्छी तरह जानने लगा और फिर आर्टिकल भी लिखने लगा छोटे।
ये कौन से सन की बात होगी?
1940s के ज़माने में था। तो शुरू हुआ तो मैं उसमें पढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे उसमें ये सभी, क्योंकि गांधी जी का बड़ा इन्फ्लुएंस था हमारे परिवार में, तो उसमें साथ में नेशनल बातें हिंदुस्तानी स्वराज, जैसे मराठी में कहते हैं ना स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। ये कौन किसने कहा था? ये गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक ने कहा
था कि जन आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है
और हम उसे लेकर
है।
तो ये आया शुरू और ये हमारे परिवार में और बढ़ता गया। मेरा जीवन पर बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, मगर मैं पढ़ता था एक गुजराती स्कूल में, न्यू ईयर स्कूल, यहाँ न्यू ईयर था, अब नहीं रहा वो स्कूल, तो गुजराती में इतना अच्छा मैं बोलने लगा था लिखने लगा था, मगर क्या फिर हिंदुस्तानी भाषा में भी उच्चारण में गुजराती का थोड़ा सा असर था, और अंग्रेज़ी बहुत अच्छी तरह बोलता था मैं, इंग्लिश ब्रॉडकास्टर था बचपन में।
अच्छा,
ऑल इंडिया रेडियो पर।
तो आपका रेडियो की तरफ जुड़ाव उसी दौर में हुआ?
हाँ, उसी दौर में हुआ, और मेरे बड़े भाई जो थे हमीद, वो इंग्लिश के बड़े अच्छे ब्रॉडकास्टर थे, फर्स्ट क्लास ब्रॉडकास्टर, तो उन्होंने मुझे वहाँ ले जाकर पहले पहल रेडियो से ताल्लुक जोड़ा मेरा, और ये भी ज़रा लंबी कहानी है इसलिए मैं पूरी नहीं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो मेरे जीवन में आई,
और आवाज़ आपकी बचपन से ही बिल्कुल ऐसी रेडियो वाली आवाज़ थी?
एकदम तो नहीं, धीरे धीरे,
लेकिन धीरे धीरे
बड़ी मैंने मेहनत की उसमें।
जी जी।
एक उस ज़माने में हमीद भाई ने ज्वाइन किया था, एक थिएटर ग्रुप नाम का इदारा था जो प्लेस करता था अंग्रेज़ी में, उसके जो गाते थे और वो थे पदम सिंह, अलग पदम सिंह नाम सुना होगा,
जी जी,
उनके बड़े भाई।
अच्छा,
पहला नाम मैं बोल रहा हूँ सुल्तान पदम सिंह। तो सुल्तान पदम सिंह ने शुरू किया था ये थिएटर ग्रुप, और ये उन्हीं के घर में, यहाँ इलेक्ट्रिक हाउस के पास घर था उनका, तो वहीं रिहर्सल वगैरह होते थे, तो वहाँ भी मैं जाता था, वहाँ भी देखा।
तो आपने भी थिएटर किया?
थिएटर बहुत किया।
अच्छा,
तो वो अच्छा वगैरह। अच्छा, आपने सवाल पूछा था वो, उससे मैं बिखर रहा हूँ।
नहीं, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ आपको कि भाई रेडियो, उस वक्त का रेडियो और आज के दौर का रेडियो, और तब का फिल्म संगीत और आज का फिल्म संगीत।
तो उस दौर में क्या था कि रेडियो, उस ज़माने में रेडियो का स्तर इतना ऊंचा था कि देश में जो सबसे बड़े राइटर्स थे, प्रेजेंटर्स थे, और भी लोग जो बोल पाते थे, लेक्चर अच्छी तरह दे पाते थे, ये सब आकर इसमें हिस्सा लेते थे और अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते थे कि हमें रेडियो पर हमें बोल रहे हैं, ये बड़ी इज्जत की बात है।
जी जी।
तो BBC के स्टाइल में शुरू हुआ था ऑल इंडिया रेडियो, और उसमें सब बड़े बड़े लोग आते थे, बल्कि लीडर्स भी जो थे वो भी अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते थे कि उनको बुलाया गया है, बुलाया जाता था रेडियो पर कुछ भाषण देने। तो उस जमाने का जो दौर का जो जमाना था रेडियो का लाजवाब था। ड्रामे भी ऐसे ऐसे होते थे कि वो चौंक जाते थे, डिस्कशंस और बहुत सारी चीज़ें होती थी।
लेकिन वो तकनीक का जो लेवल था तब और अब उसमें तो बहुत फर्क आया ना, तो इसलिए ये क्वालिटी में भी फर्क आया शायद, लगा कि सब चीज़ रेडीमेड मिल जा रहा है तो कैसे करें।
वो धीरे 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 क्या है कि लोग भाषा में भी अपने आज़ादी के बाद आजकल का जो जमाना आ गया है ना
जी,
उसमें रेडियो तो क्या हर चीज़ बिगड़ रही, हर चीज़ है। अब देखिए मैं थोड़ा सा डाइवर्ज करूँ
जी जी जी,
ये मैंने एक चीज़ बताई आपको कि जो पार्किंग के लिए जो फाइन होती है वो कैसी गड़बड़ उसमें आती है, उसी तरह से कई चीज़ें और हैं, टैक्सेशन में बहुत गड़बड़ है और हर 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 जगह देख लो तो गड़बड़ ही गड़बड़।
नोटबंदी का क्या असर?
नोटबंदी क्या बताएं आपको, अभी क्या था कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा मौका आया जब मेरी बीवी कश्मीरी पंडित थी, मैं मुसलमान था, हम कैसे हमारा प्यार हो गया ये आपको, ये मैंने ये सारी कहानी एक तो ये सीरीज़ की अपनी सीरीज़ थी गीत माधव की छाँव उसमें दिया था, मगर वो सीरीज़ का चलन बंद होने लगा तो सारे गांव वालों ने एक डिजिटल रेडियो शुरू किया
जी,
कारवां, उसमें ये सारे 50 वॉल्यूम्स हैं और भी कई चीज़ें हैं, हर वॉल्यूम में 3-4 इंटरव्यूज के पीसेस भी हैं बड़े बड़े म्यूजिक स्टार्स या फिल्म स्टार्स के।
जी जी, असल में मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत पे कुछ करना चाह रहा था काम, तो आप लोग इतने पुराने हैं और पूरा दौर देखा है कि कैसे कैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल हुआ और आज कैसे इंस्ट्रूमेंट सारे बदल गए, तो वो जो फ़र्क आप महसूस करते हैं?
ऐसा है कि क्लासिकल म्यूज़िक मैंने भी 4 साल सीखा
जी,
मैं एक ज़माने में बहुत अच्छा गाया करता था, मैं फिर एक ज़माना आया जब मेरी आवाज़ फटी और गाना ज़रा मुश्किल हो गया मेरे लिए, तो जब भी मैं गाने की कोशिश करता तो कोई दोस्त आकर ज़ोर से पीठ पर थप लगाता कि ए बेसुरे बंद कर, क्यों बोर करता है। अच्छा इंसिडेंटली मेरी बाद में जब शादी हुई, मेरी बीवी जो थी कश्मीरी पंडित रमा मट्टू नाम था उसका, उसके चाचा ऑर्डिनरी रेडियो के म्यूजिक हेड थे मट्टू साहब, उनका पहला नाम मैं भूल रहा हूँ, और उन्होंने रफ़ी को सिखाने में भी काफ़ी काम किया था संगीत सिखाने में, तो और ये रमा भी अच्छी तरह संगीत गा भी लेती थी मगर शर्माती बहुत थी, और मैं चूँकि जान गया कि ये इतनी इसके अंकल इतने बड़े संगीतकार हैं तो इसके सामने तो मैं गा नहीं सकूँगा, तो और गाने का शौक ज़रूर था तो मैं गाने का शौक ज़रूर था और मैं बाथरूम में जब नहाता था तब गाया करता था, तो होता ये था कि उसमें एक दिन क्या हुआ कि वो मैं भूल गया कि बाथरूम के ऊपर एक खिड़की है जो मेरे बेडरूम में खुलती है, तो मैं जोर जोर से गा रहा था तो रमा ने ज़ोर से आकर दरवाज़ा खड़ा रहा खटखटाया, कहा अरे क्या हो गया पेट में दर्द हो रहा है क्या, तो फिर मैंने गाना बाथरूम में भी बंद कर दिया। खैर तो हिंदुस्तानी का जो स्तर था संगीत में
जी,
खासकर जो फिल्म म्यूज़िक आया तो क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, ट्रेडिशनल यानी पूजा का जो संगीत था ये तीनों मिलाकर और साथ साथ गज़लें वगैरह जो उर्दू फारसी का जो असर था, तो ये सब मिल मिलाकर हमारे देश के हर हिस्से से कोई ना कोई अच्छा संगीतकार या गीतकार आया और हिस्सा लिया उन्होंने, गायक भी। तो हमेशा वो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में हिंदुस्तानी संगीत की हर खूबी मौजूद थी। और ये बाद में हुआ कि अब हर चीज़ बदलती है, वेस्टर्न म्यूज़िक भी आ गया, गीतकार भी अलग अलग उसमें पढ़ने लगे। तो वो जो ऊंचाई थी हमारे हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की, वो बिखर गई। और अब तो डैंड हूँ भू फाम बहुत होता है ना, उसे बोलने में भी लोग ऐसा बोलने लगे हैं कई बार चिल्ला चिल्ला कर कि पता नहीं लगता कि क्या बोल रहे हैं और क्या बेच रहे हैं। कभी स्पॉट भी हो तो पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हैं। एक ज़माने में मुझे स्टेज एक्टिंग बहुत अच्छी तरह करता था, हिंदी में भी और गुजराती में भी और अंग्रेज़ी में भी, और स्कूल में बड़ी प्राइजेस भी जीते मैंने, कॉलेज में भी जीते। तो मुझे शौक था कि भाई स्टेज पर मैं तो कर रहा हूँ, मैं फिल्म एक्टर क्यों नहीं बनूँ। तो हुआ ये कि एक ज़माने में एक बड़े अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने हमारे भाई को फ़ोन किया, ये नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। ये एक फिल्म थी जिसमें नूतन वो थी मेन एक्ट्रेस, गाना जिसमें है ना, मैं तो भूल चली बाबुल का घर पिया का घर प्यारा लगे, सरस्वती चंद्र के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो हमीद भाई को उन्होंने फ़ोन किया कि भाई तुम्हारे छोटे भाई जो हैं अमीन, वो रेडियो पर तो बहुत धूम मचा रहे हैं, बहुत पॉपुलर हैं, गीतमाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं नई फिल्म बना रहा हूँ जिसमें नूतन है हीरोइन, तो उसमें मैं अमीन को लेना चाहता हूँ हीरो की हैसियत से, तो वो मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। तो उन्होंने कहा ज़रूर ज़रूर आइए, क्यों नहीं। उन्होंने मुझसे भी कहा, मैं तो खुश हो गया, अरे मैं तो कब से सोच रहा था कि कोई मुझे हीरो का काम दे। तो एक दिन वो आए, मेरे भाई के कमरे में बैठे, भाई ने फ़ोन किया मुझे, मैं इस कमरे से उनके कमरे में गया और वहाँ गया तो ये बैठे हुए थे साथ। मैंने कहा नमस्कार नमस्कार, तो वो मेरी तरफ देखते रहे अजीब सा मुखड़ा बनाकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कहा कि क्या कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो बात यह है कि मेरे मन में जो मेरे हीरो का कंसेप्शन है उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी मेल नहीं खाती, तो मुझे माफ़ करना, मैं नहीं ले पाऊँगा तुमको। तो उन्होंने देखा मेरा चेहरा बिल्कुल उतर गया और मैं करीब करीब रोने लग गया था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तुम घबराओ नहीं, मेरे फिल्म में दो तीन और भी रोल हैं, एक है सेकंड कॉमेडियन और एक है थर्ड विलन, तो वो तुम्हें सूट करेगा, तुम्हें वो रोल दो। उन्होंने कहा मैं तो हीरो बनना चाहता था, आप विलन और कॉमेडियन मुझे बता दें, मुझे नहीं करना है काम, छोड़ दिया। वैसे फिर मुझे याद आया कि मुझे एक बार सपने में भी एक चोट लगी थी।
अच्छा।
चोट यूँ लगी कि मैं सपना देख रहा था कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ फिल्म स्टार, और रॉयल ओपरा हाउस में मेरी फिल्म लगी है जिसमें मैं हीरो हूँ। तो मैं गया वहाँ, टिकट ख़रीदा मैंने, उस ज़माने में कोई 2.5-3-5 रुपये का बहुत अच्छा टिकट मिलता था, सीट अच्छे क्वालिटी का सीट। तो ख़रीद कर मैं दरवाज़े पर गया रॉयल ओपरा हाउस के, तो वहाँ देखा कि दरवाज़े पर एक ऊंचा पठान खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा टिकट ख़रीदा हुआ मैंने, शो शुरू होने वाला है, तो मुझे अंदर जाना है, आप क्यों दरवाज़ा बंद करके क्यों खड़े हैं। कहने लगे नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, मैं टिकट खरीद कर लाया हूँ और मैं इस फिल्म का हीरो हूँ, अमीन साहानी, तो मैं क्यों नहीं अंदर जा सकता? कहने लगे, देखिए हमको नहीं मालूम आप कौन है, हमको नहीं मालूम आप कौन है, मगर हमारे मैनेजर ने कहा है कि शो शुरू हो चुका है, दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, अगर तुम दरवाज़ा खुलेगा तो जितना लोग अंदर बैठ रहे हैं सब बाहर आ जाएगा। तो तब से
ये तो आपके सपने की कहानी है।
इसलिए मैं
नहीं, लेकिन वो तो देखिए बहुत पुरानी बात हो गई, और वो एक्टिंग एक अलग चीज़ है, इंटरव्यूज जो आपके अनुभव होते हैं वो एक अलग चीज़ है, और